संतोष इधर ही आ जाओ ना पीछे। चिमन भाई सेवा में, चिमन भाई के नंबर सबसे आगे है। चिमन भाई जैसी सेवा और शायद किसकी नहीं है। चिमन भाई कब से देख रहे हैं, सबसे आगे है चिमन भाई।
सब में मिक्स हो जाते हैं, कैसा भी हो, कोई अच्छा हो, बुरा हो, कुछ नहीं होगा। भगवान का बोला कि बात की पड़ती है तो बोला कि भूल होती है तो उसको छिपाओ।
आई एम सॉरी। ये कुंज दादी अपना अनुभव सुनाती है ना सीधा। एक बार बाबा भोजन करते रहते हैं तो कुंज दादी आती है उधर से और वो अपना सेवा का अनुभव सुनाना चालू करती है कि मैंने ये किया वो किया। तो बाबा बोलते तुमने हमको साजन से जुदा कर दिया। तो दादी हमेशा सुनाती है बाबा आई एम सॉरी। बड़ा अच्छा लगता है वो सुनने के लिए। ये यहाँ हॉस्पिटल में भी सुना, हर बार सुनाया है। कुंज दादी तो चले गए ना, ओम शांति, बिजी है आज आप। ये है बोलिए अनुसूची सभा,
बोलते हमको अकेला नहीं
करो। मैं इधर बैठ गया, यही तो दूर दूर हो गया।
नहीं नहीं कुछ
नहीं,
एक अच्छी लहर बन गई हम लोगों में। हम बिल्कुल अरे मुरली पढ़ते थे, रियलिटी बताता हूँ, कोई महिमा वाली बात नहीं। एक अटेंशन गया और सब जो कागज और वो रखना जेब में और वो लिखते रहना,
तो बाबा लगन भाई की पॉइंट बताया कल का। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एस, अच्छा आई एस आई पी एस। दादी को देखो कैसी पॉइंट्स याद रहती है मुरली की। एज है 90 के ऊपर पर पॉइंट्स कैसी पावरफुल याद रही। कल की मुरली की दादी ने जो पॉइंट सुनाई ना अजय, कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है दूसरे घर में जाता है तो वो खींचता है, माँ बाप को ज्ञान में लेके आता है, मम्मा बाबा को देखता है तो मुस्कुराता है, बोलता कुछ नहीं है। ये पॉइंट देखो मुरली में कहाँ छिपी हुई है, उसको पकड़ना वहाँ से और अपने क्लास में उसको बोलना, मतलब ये पॉइंट को अपना बनाया है, उसके बिना नहीं हो सकता है, उसके बिना नहीं होता। किसी में इधर सामने आ जाओ ना, ये जो चीज है ना ये है ज्ञान की पकड़। ऐसे कर करके तो ज्ञान सागर बनते हैं। एक एक पॉइंट को पकड़ लिया है वहां से, नहीं तो वहां से निकालना
मुश्किल होता
है। अपने ब्रेन में अलग एक फोल्डर क्रिएट करना, वहां से कट करके वहां पेस्ट करना और फिर वो फोल्डर को इंडिपेंडेंटली यूज करना। वो छुड़ गई कौन सी मुरली थी वो भूल जाएगा, पर वो पॉइंट उनको नहीं भूलेगी क्योंकि वो अपना बना लिया है वो पॉइंट। तो ये जो है ना ये बहुत लंबे समय का मुरली पढ़ने का अभ्यास और अटेंशन देने के अभ्यास के बाद ही होता है। इतनी सडनली नहीं कर सकता कोई, वहां से निकाल के वो क्लास में बोलना वो पॉइंट तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ वो टाइम पे याद आए उसी संदर्भ में, उसी संदर्भ में वो पॉइंट वहाँ याद आए। ये एक इसलिए तो हमको ज्ञान का बल कैसे बनेगा, बलवान बनने का यही है। हर क्लास में अलग अलग रहम अलग, कृपा अलग, दया अलग, श्रीमत अलग, डायरेक्शन अलग, नियम अलग, मर्यादाएं अलग। ये है ऐसा तो कई पे भी नहीं है क्लासेस तो अलग 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 अलग, अलग बताते। नियम अलग, मर्यादा अलग, डायरेक्शन अलग, श्रीमत अलग, मतलब कितना चिंतन है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान से ही तो शक्तिशाली बना के रखा है, ये तो शक्तिशाली नहीं।
ज्ञान की शक्ति या तो योग की शक्ति,
दोनों तो देखो ज्ञान की शक्ति अपने पास बहुत ज्यादा है ना तो अपने आप योग अच्छा होने लगता है, बुद्धि भटकना बंद हो जाती है, कहाँ जाएगी ऑटोमेटिक योग, तो ऑटोमेटिक योग की शक्ति जमा होनी। जब ज्ञान ही नहीं है भटक रहा है तो कहाँ से योग। विद्यालय का फर्स्ट सब्जेक्ट ही ज्ञान है। हाँ पर माया उनको वहाँ पे एक पॉइंट की है, माँ बे ईमानदार बना देती है, माया शैतान है, वहीं पे पापा ने बोला था उसी मुरली, माया शैतान है, बेईमानदार बना देती, माया अजगर है जो खा लेती है ऐसे ऐसे बच्चों को।
उसी में बोला माया गिराती है बाप उठाते,
बाप उठाते वहीं है, वहीं है उसी में, वही वही पेज पे माया गिराती है बाप उठाते है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट है, पर इसको ना वो वहीं रह जाती है, वो हमारी नहीं होती है, वो वहीं रह जाती है कहीं ना कहीं। वो एक दूसरा
ज्ञान
एक ही बूंद देखा थी,
और ज्ञान की बूंद तो है तो अपने को आत्मा समझ।
और जब तुम बाप को याद करते हो तो शांति की और को शांति का दान देते हो, ये याद का एक अलग फायदा है।
उन्नति का साधन जब तुम याद में बैठते हो तो दूसरों को भी दूसरों की उन्नति होती है, स्वयं की होती है,
स्वयं की उन्नति हो दोनों होती है। ये एक याद के जो फायदे हमारी लिस्ट है ना, वो याद के फायदे में हमारा भी बहुत सारा है, हमारे विकर्म ये, पर ये जो है ना एक दूसरा फायदा है, मतलब हम याद में बैठे हैं ऑटोमेटिक दूसरे शांत हो रहे हैं, दूसरों को ऑटोमेटिक शांति का दान मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है, आत्मा समझना और परम धाम में स्थित हो जाना मतलब विश्व सेवा अपने आप हो रही है, कुछ नहीं करना है। आत्मा समझना मतलब ऑटोमेटिक विश्व में शांति के दान किरने फैलना चालू, कुछ करना ही नहीं है बस। मामा बाबा कहते हैं मैं हम इतने मेहनत करते इतना फिर भी इतना योग लगाते इतनी मेहनत करते फिर भी विकर्म विनाश नहीं करते। वहीं पे बाबा ने बोला तो जो नए नए आएंगे वो कैसे विकर्म विनाश करेंगे, नए नए मतलब ये 69 के पहले की बातें है, तो उसके बाद जो भी है वो सब नए नए वो विकर्म कैसे विनाश करेंगे। योग लगाना मासी का घर नहीं, कहीं तो एक बार बाबा ने बोला तुम बलि चढ़ो तो मैं चढ़ू, बाबा ने एक जगह बोला तुम अगर बलि चढ़ोगे तो मैं चढ़ू, तब तक नहीं, कंडीशन है उसमें, तुम चढ़ोगे तो चढ़ूंगा नहीं तो नहीं। हाँ पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ हाँ पापा मदद करेगा फिर आगे।
और आदमी उसमें था उसके संदर्भ में ला है इसलिए ला,
हाँ वो आएंगे हम आज के मूल्य पे आते हैं, ये खत्म कर लेते पहले फिर उस पे आते हैं। ये इसके इसमें एक जगह बाबा ने बहुत अच्छी मूल्य, तुम्हारे द्वारा वेश्याओं और भिलनियों का उद्धार होना है, परंतु अब तुम में वो शक्ति नहीं है, अभी वो शक्ति नहीं है, तुम्हारे द्वारा ये होना है पर तुम में अभी वो शक्ति नहीं है। और एक वाक्य ऐसा बाबा ने बोला है वो एक मुरली में एक वरदान में कि जो मैं अभी तक सोच रहा हूँ उसमें जो था ना, दया भाव धारण करो तो किसी आत्मा के जन्म जन्म के विकर्म या हिसाब किताब तुम एक सेकंड में समाप्त कर सकते हो। उसमें दूसरा एक वाक्य था वो ऐसा वाक्य है कि अभी तक मतलब बाबा ने उसमें बोला अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, हाँ अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ तो ब्राह्मण परिवार की जितनी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएगी, दया भाव धारण करो। कैसा, हाँ वरदान ही, पर ये कैसा वाक्य है देखो सोचो इसके बारे में। बाबा ने बोला ब्राह्मण परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी अगर तुम दया भाव में स्थित हो। सोचने वाली आज दया कृपा रहम तीन अलग अलग बताए दादी ने कृपा तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे उसको कृपा को वहां जोड़ा, रहम रहम दिल बाबा, हाँ कृपा रहम और क्या दया, दया धर्म का मूल है वो दया धर्म है, ये तीन मतलब एक ही चीज पर दया खुद पे ऊपर करनी है, कृपा बाप करता है और रहम दिल बनना है, रहम दिल बाबा है, बाप रहम दिल है, तुम बच्चे भी रहम दिल हो, दोनों चीज है वहां पर, तो वो एक चीज। और संग दोष से समाप्त करो, कल ही था शांति के बारे में था, लोग जानते नहीं शांति क्या चीज है, केवल तुम जानते हो शांति है और दुनिया वाले नहीं जानते। कल ही था ये, कल के
बाबा ने बताया कि आत्मा सब जाती है तो शरीर से
डिटैच हो जाती है,
तो मान लो कैसे वो सदर्म में टिक जाती है, डिटैच होना मतलब उसी को बाबा ने कहा कि सदर्म
तो कोई संबंध नहीं, कोई
संबंध नहीं। उस दिन एक बार था ना मुर्दा है शरीर, ये मुर्दे के मुर्दे रह जाते हैं, कली के कली रह जाते हैं। एक बार बाबा ने बगीचा देखा, कोई तीन चार प्रकार देखे उसमें, एक थोड़ी खिली हुई है, थोड़ा खुला है, एक बंद है, कोई आधा बंद है, कोई पूरा खिला हुआ है, कली कली हम उखड़ी क्या क्या देखा कोई कली के कली रह जाते, मुर्दे के मुर्दे रह जाते, वैसे कैसे रह जाते है जिन्हें सोया तुम कोई योग के समय कोई कली है, कोई बंद है, कोई थोड़ा खुला है, कोई आधा खिला है, कोई पूरा खिला है, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग
बच्चों
के लिए। हाँ वो देखा है मतलब ये चिंतन चला उसके बाद ही किया ना, मतलब उस दिन भी बोला ना ब्रह्मा ये झोपड़ी में रहता है, तो महल में नहीं रहता। एक चीज है कि जो इतने बड़े यज्ञ का है वो है, वो अंत तक हम बोलते हैं ना हटियोग नहीं करना है, बाबा ने तो सहयोग बोला है, पर ब्रह्मा बाबा झोपड़ी में रहे, ये सोचने वाली बात है। क्यों कोई झोपड़ी में रहे, बना नहीं सकते थे, सकते थे हाँ, वो ही ना, मतलब कितनी ऊंची बात है ये झोपड़ी में, मतलब उसमें। और ये तो 76 के पहले की बात है, 76 के पहले तो यहाँ बहुत ठंडी थी, उसके पहला जो एटॉमिक ये लगा ना यहाँ पे पोखरान में वो न्यूक्लियर, उसके बाद में गर्मी चालू हुई है, फर्स्ट इंदिरा गांधी के टाइम पे जो लगा इधर 76 में, उसके पहले तो इधर बहुत ज़बरदस्त ठंडी थी, वो जो न्यूक्लियर लगा बेल्ट, उसके बाद में थोड़ी गर्मी पड़ी पूरे राजस्थान में, उसके पहले मतलब। आज की मूली पे
दो पॉइंट सुना रहे थे, वो अनादि जो ड्रामा का बाबा ने नियम बनाया था ना कि एक का
पदम नहीं लाख, वैसे तो लाख बोलते, कभी सौ बोलते, कभी हजार बोलते, आज लाख बोला।
और तीसरी बार भोगना, भोगना तो ये इतनी लाख है, ऑटोमेटिक काम करता है, इतना कुछ ये नहीं कर सकते आप, किसी को दोष नहीं दे सकते,
कुछ नहीं। ये तो भक्ति में भी मतलब कर्म का जो सिद्धांत है वो ऐसा है, उसमें भगवान इंटरफियर नहीं करता, वो अपने आप चलते रहता है ऑटोमेटिक, जिसने ये किया उसको वो मिलेगा, बात बाबा ने बोला था, वो मैं नहीं देखता, वो अपने आप माफी, वो अपने आप चलते रहते
और जो है ना कमजोर राई को पहाड़ बना रहे,
और मास्टर सर्वशक्तिवान
पहाड़ बना खेल समझते, खेल में तो घबराने की बात नहीं,
पर वो टाइम पे सब भूल जाता है ना, परिस्थिति के टाइम पे ये भूल जाता है, वो हो गई उसके बाद में पूरा ज्ञान याद आ जाता है, सारा याद आ जाता है। अभी कोई हम बैठे हैं ट्रेन में बैठे हैं, कोई आता है हमको बहुत गालियां देना चालू करता है, हमको भी आवेश आ जाता है, हमारा कुछ नहीं है उससे, ऐसे ही कुछ तो कुछ बोल के चला गया, फिर हमने भी थोड़ा आवेश, फिर बाद में सोचता ये क्यों आया था, हमारा तो कोई संबंध ही नहीं उससे, फिर बाद में सोचते अरे ये तो कर्मों का हिसाब किताब था, सारा ज्ञान याद आ जाता है परिस्थिति होने के बाद,
बाद में आता है,
तुरंत आ जाता है बाद, परिस्थिति खत्म तुरंत सारा ज्ञान याद, परिस्थिति सामने ज्ञान खत्म।
पढ़ाई के बारे में पढ़ाई भी चलती है लेकिन नंबर तो पेपर से
नहीं, पेपर से
नहीं, तो वो पेपर हमारे प्रतिदिन है, ये सब माया जनरेट हो जाए, शुरू में कितनी ग्यारह बात है और उसके लिए ग्यारह बात है, दूसरे पहले
चलो हम चालू करते हैं अभी पहले से, आप निकल जाओ, आप सही कहा, आपको भी जाना है, बाबा ने
बच्चों को आत्मा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान तुम्हें ही मिला
है।
ये
और किसके पास
ये बहुत बढ़िया है।
हाँ, तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है, एक जगह वहीं पे वही मुरली में है, तुमने बाप के द्वारा बाप को जाना है और यथार्थ ज्ञान केवल तुम्हारे पास
मिला
है। ललकार, हाँ ललकार करो केवल। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या बोला है कि बच्चे गाते हैं कि बाबा आपकी लीला अपरंपार, तो बाबा गाते हैं कि तुम बच्चों की लीला भी अपरंपार। और कैसी है लीला बच्चों की? विचित्र, हर्षाने वाली, वंडरफुल वैरायटी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, इधर आ जाए। संतोष आते हो? तो आज की मुरली में बाबा ने बोला ये भी भाई कि बाबा की नहीं बच्चों की महिमा अपरंपार। कौन सी कैसी कैसी है महिमा? वैरायटी महिमा है, वंडरफुल महिमा है, विचित्र महिमा है, हर्षाने वाली महिमा है, और एक महिमा है। और कैसी है? और एक पॉइंट है, जैसे जैसे कोई विकारों के वशीभूत, परवश, बेहोश, क्या कहता है और क्या करता है ये उसको ही समझ में नहीं आता है। ऐसे बोला ना, विकारों के वशीभूत या परवश होके वो क्या कहता है क्या करता है वो उसको समझ में नहीं आता है, ऐसी महिमा। हाँ, कहता क्या है करता क्या है समझ में नहीं आता है, ऐसी महिमा। तो बाबा ने आज ये बोला, तो ये महिमा देख कर बाप अपने दो रूप प्रकट करते हैं। सबसे पहला रूप आपका नहीं रहम दिल, और दूसरा न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस। रहम दिल क्या करता है? रहम दिल बन के रियायत देता है और बार बार एक दो तीन चार बार माफ करता है। और दूसरा न्यायकारी जस्टिस, जस्टिस क्या करता है? हाँ, जस्टिस क्या करता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जस्टिस क्या करता है? लॉ बनाता है। अभी तो बताया शैलेंद्र भाई ने, सुप्रीम जस्टिस क्या करता है? न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस क्या करता है? लॉ बनाता है। कौन सा लॉ? अविनाशी लॉ। कौन सा लॉ है वो? एक का लाख गुना प्राप्ति और पश्चाताप या भोगना, ये लॉ बनाता है। तो दो काम है उसके, जब बच्चों की ऐसी विचित्र लीला है, वंडरफुल लीला है, वैरायटी वाली लीला है, विकारों के वशभूत होके, बेहोश होके या परवश होके क्या कहता है क्या करता है समझ में नहीं आता, ये ऐसी जब लीलाएं करते तो बाप अपने दो रूप प्रकट करते हैं। पहला रूप है उसका रहम दिल, जिसमें बाप को बच्चों का कल्याण करना है, बच्चों को कल्याण करो, कल्याणकारी बन, बच्चों के कल्याण के लिए रियायत देता है, और दूसरा माफ करता है, तीन चार बार माफ कर देता है, एक बार दो बार तीन बार चार बार माफ करता है। कल बोला ना माफी मांगो, आई एम सॉरी। आज बोला बाबा माफ करता है। और फिर दूसरा रूप है उसका सुप्रीम न्यायकारी, उसके पहले एक शब्द बाबा ने वहां जोड़ दिया, न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस, न्यायकारी। आजकल दुनिया में जितने जज है वो सब पैसे खाते हैं। हम उधर उत्तराखंड गए थे ना, वहां पे एक भाई मिला हमको सेंटर पे, वो पहले वकील था, तो उसने अभी छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों छोड़ा आपने वकीली का? तो बोले जितने भी जज है जब तक आप उनको पैसे नहीं खिलाते तब तक आपके साइड में डिसीजन वो देते ही नहीं, इसके लिए वो जॉब ही छोड़ दिया, वो बीच में सेंटर पे ही रहता है। तो आज बाबा ने अपने न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस, वो है पर सब करप्शन है, भ्रष्ट है सारी दुनिया। वो किसको? छोटे छोटे कोर्ट, ये आबू का कोर्ट दिखा है किसी ने? छोटा सा कोर्ट है, घूमते रहते हैं लोग, वो जज का जो सीट है वो ऐसा थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म है छोटा सा, वहाँ वो जज बैठता है, बाकी लोग इधर तीन चेयर इधर है, बस इतना ही कोर्ट है। तो ऐसे छोटे कोर्ट में कहाँ चलता है, वो ऊपर तक कहाँ जाता है कुछ? तो यहाँ तो सब यही चलता है, इसके लिए बाबा ने बोला न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस। क्या करके रखा है उसने? न्याय लॉ बना के रखा है। और ये जो लॉ है ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है, बाबा को कुछ करना नहीं पड़ता, इसने ये कर्म किया तो ये मिलेगा, ये कर्म किया तो ये करना, उसको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप होते रहता है, ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी। एक शब्द कितना अच्छा शब्द है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे कर रही तो तत्सफल चाखा। तुलसीदास रामचरित्र मानस में एक जगह लिखा है, कर्म प्रधान ये संसार बना के रखा है राम ने, राम इंटरफियर नहीं करता है इसमें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे कर रही तो तत्सफल चाखा। अपने आप कर्मों का हिसाब होते रहते। फिर ये बोला विचित्र लीलाए, अभी लीलाए करने वाले चार प्रकार के बच्चे हैं, पकड़ पाया आज की मुरली में ये चीज, चार प्रकार के बच्चे हैं। कौन कौन से? जेपी भाई, सबसे पहला वो बच्चे जो किसी व्यक्ति में फंस जाते हैं, उसका हम डिटेल में देखेंगे। दूसरे वो जो किसी साल्वेशन में फंस जाते हैं, तीसरे वो जो घबरा जाते हैं, और चौथे कोटों में कोई भाग्यशाली, उनके बारे में सेकंड पेज पे बोला ना बाबा ने। तो पहले बच्चे कौन से हैं? बाप को जान लिया, बाप को पा लिया, वर्षा भी पा लिया, एक ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मण भी बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी मिल गया, राजयोगी भी कहलाने लगे, सेवा के निमित्त बन सेवा भी करने लगे, आगे प्राप्ति जो है सर्व प्राप्तियां भी हो गई, प्राप्तियों का नशा भी है, ईश्वरीय नशा भी है, प्रारब्ध के जो निशानी है वो भी सारी है। ये आठ बातें वहां बोली। ये सब होते हुए भी माया से सफलता पूर्वक सामना करने की सब कुछ है। क्या क्या कर दिया? बाप मिला, बाप को पा लिया, वर्षे को पा लिया, बाप को जान लिया, पा लिया, वर्षे को पा लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल लग गया, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण बन गए, राजयोगी कहलाने लगे, ईश्वरीय सेवा के निमित्त बन गए। कितनी सारी बातें, ये सब होने के बाद की बातें है आगे वाले। ईश्वरीय सेवा के निमित्त बन गए, सारी प्राप्तियां हो गई, प्राप्तियों के बाद में प्राप्तियों का नशा भी है, ईश्वरीय नशा भी है, प्रारब्ध की सारी निशानियां भी है, उसके बाद भी माया से सामना करने में असफल है। बाबा ने बोला माया को बलवान समझ स्वयं को दिल शिकस्त अनुभव करते, माया को बलवान देख स्वयं को दिल शिकस्त, माया को परख नहीं सकते। ये सब होने के बाद भी, और इसकी वजह से क्या करते हैं फिर, स्वयं में हिम्मत नहीं रहती, स्वयं को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं है, बाप के साथ और अनुभव साथ और सहयोग का अनुभव करने की हिम्मत नहीं है। इसके लिए फिर अपने जो साथी है उनको पंडा बना देते हैं, अपने साथी जो है उनको, उनका डायरेक्ट बाप के साथ और सहयोग का अनुभव नहीं होता तो साथियों के साथ और सहयोग का अनुभव ले लेते हैं। जैसे बाबा ने आज बोला तिनके का उदाहरण दिया ना, तिनका क्या करता है, गिरता है और हिलता है, वैसे हो जाता है। तो बाप से किनारा कर दिया और किसी आत्मा को सहारा बना दिया। यह है फर्स्ट टाइप की लीला जो बाबा ने देखी, फर्स्ट प्रकार के, फर्स्ट टाइप के बच्चे। कौन से बच्चे? जिन्होंने बाप को जान लिया, पा लिया, वर्षा पा लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहलाने लगे, सेवा के निमित्त बन गए, राजयोगी कहलाने लगे, ईश्वरीय प्राप्ति हुई है, प्राप्तियों का नशा है, ईश्वरीय नशा है, ईश्वरीय प्रलब्ध सब निशानियां हैं, उसके बाद भी माया को सफलता पूर्वक सामना करने की शक्ति नहीं है, एक माया को पहचान नहीं पाते, दो और तीसरा माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते, और ये सब होने के कारण बाप से अपने आप को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कभी हार कभी जीत, इसके कारण क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, थक कर रुक जाते हैं। बाबा ने बोला आज कितनी प्रैक्टिकल बात है ये, कि जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया है, ये सब मिल गया, उसके बाद भी माया से आज हार हुई कल जीत हुई, हार हुई जीत हुई, तो बाबा ने बोला खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत कम हो जाती है, ऐसा लगता है क्या अभी करे छोड़ो। हाँ वो अरे कोशिश तो कर रहे हैं परंतु वो हिम्मत ही नहीं है, बाप से डायरेक्ट साथ और सहयोग की लेने का हिम्मत नहीं है, इसके लिए फिर किसी ना किसी को सहारा बना देते। बहुत सूक्ष्म बात है ये, मुरली का टाइटल ही है कर्म की गुह्य गति, दो बातों की गुह्य गति, एक तो कर्म और दूसरा समय है। संसार में दो ऐसी एक बातें उनकी गुह्य गति है, समय की बहुत गुह्य गति है, कर्मों की बहुत गुह्य गति है। तो ये फर्स्ट टाइप की बच्चे हैं जिनकी बाबा ने लीला है देखी। दूसरे टाइप के वो बच्चे हैं जो कई बच्चे, वहाँ से पैराग्राफ चेंज, ये लाइन चेंज होती है, वाक्य चेंज होता है, बाबा ने बोला जो किसी ना किसी साल्वेशन को आधार बना देते, ये मिला तो पुरुषार्थ करेंगे, ये होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, हॉस्पिटल में नहीं गाड़ी अगर होगी तो जाएंगे मधुबन, नहीं तो इधर ही बारिश है चलो छोड़ो इधर ही, लाल लाइट है तो योग, गीत बज रहा है तो योग, कुछ ना कुछ चाहिए, गद्दा अच्छा है तो योग, नहीं ये जमीन पे बोला अरे बाप वो नहीं होगा ये है तो योग, कुर्सी चाहिए, कुर्सी है तो योग, नहीं तो छोड़ो आज तो कुछ और कर लेते हैं। ये सेकंड टाइप की लीला है बाबा ने जो देखी। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो परिवर्तनशील का परिवर्तन, जो बाबा तो अविनाशी है उसका सहारा छोड़, जो विनाशी और परिवर्तनशील है उसका आधार बना, तो उनको दो बातें और हो जाती है, वो कौन सी? शिवानंद भाई बाबा ने बोला उनकी, उनको जो प्राप्तियों का जो नशा है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, उनका नशा विनाशी नशा रहता है, और दूसरा उनकी स्थिति जो है एक रस नहीं रहती है, कभी बहुत खुश कभी एकदम उदास नीरस, ऐसे शब्द बोले ना बाबा ने आज, एकदम उदास हो जाते एकदम नीरस हो जाते, कभी एकदम खुश कभी नीरस, क्योंकि उनका जो आधार है कुछ तो वस्तु है, पहले जो ग्रुप है उनका आधार व्यक्ति को बना दिया उसने आधार, कि ये साथ में है तो हम मधुबन जाएंगे योग करने, ये साथ में है तो योग करेंगे, ये साथ में बैठे तो अच्छा है, ये कैटेगरी कम है व्यक्तियों में फंसने वाली, सेकंड कैटेगरी ज़्यादा है जो वस्तुओं में फंसे किसी साल्वेशन का आधार लेते। बाबा ने बोला साल्वेशन को लाठी बनाते, साल्वेशन को लाठी बनाते, ऐसे बोला ना, ये सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी और एक कैटेगरी वहाँ पर, वो इन सब से आगे, वो कैटेगरी है बाबा बाप को जान लिया, बाप को साथी बना लिया, उमंग है, उमंग में है, उत्साह में है, उल्लास में है, फिर भी 63 जन्मों का हिसाब किताब है, और ये जब हिसाब किताब स्वभाव संस्कार बाहर निकालते हैं तो वो इसको देखकर घबरा जाते हैं। बाप के साथ है, मंजिल तक भी पहुंच गए बाबा ने बोला, मंजिल तक भी पहुंच गए, परंतु ये हिसाब किताब जब सामने आता है तो घबरा जाते हैं। ये थर्ड कैटेगरी है। और फोर्थ कैटेगरी कोटो में कोई है, वो सबसे रेयर सबसे अच्छी कैटेगरी वो है कि जिसमें तूफान आए तो उसको क्या समझते हैं? तोहफा, माया के हर रूप को वो जान लेते हैं, और क्या करते हैं? स्वभाव, ये जो टक्कर होती है स्वभाव संस्कार की, उसको आगे बढ़ाने का साधन बना लेते हैं, और स्वयं बाप को साथी बनाकर साक्षी दृष्टा रहते हैं। ऐसे जो बच्चे उनको निश्चय होता है कि अभी पहुंचे की पहुंचे, राइट, उनको ये निश्चय होता है कि अभी पहुंचे की पहुंचे। तो ये है फोर्थ कैटेगरी वाले बच्चे। तो पहले कैटेगरी वाले बच्चे व्यक्ति में फंसे हैं, बाप से किनारा कर दिया, उसको सहारा बना दिया। दूसरे कैटेगरी वाले साल्वेशन, किसी फैसिलिटी, साल्वेशन मतलब कोई तो फैसिलिटी, उसको ये मिला मुझे नहीं मिला, उसमें फंसे हुए हैं, तो उनकी स्थिति एक रस नहीं रहती है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव लंबे समय तक नहीं होता है, उनको विनाशी समय के लिए होता है, बाबा ने बोला आज। और थर्ड कैटेगरी वाले उससे सबसे आगे है, सब कुछ अच्छा है, पर सडनली कोई हिसाब किताब आ गया तो वो देख के घबरा जाती है, ये क्या हो गया ऐसा क्यों। और चौथा कोटो में कोई, तूफान को तोहफा समझते हैं, माया के हर रूप को परख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, साक्षी होकर रहते हैं। ये चार प्रकार के बाबा ने लास्ट में बोला कि बाबा इन इस प्रकार वैरायटी आत्माओं को देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ याद करो, याद करना है, जब तक याद नहीं करेंगे ना तो रहता नहीं है इधर। ये ज्ञान ऐसा है, इधर आज पढ़ा 85% जो मुरली सुनते हैं ना उसमें का 1% याद रहता है सुबह, जब तक वो पढ़ते नहीं और उसको रिवाइज नहीं करते, चिंतन नहीं करते सारे दिन भर, तो कुछ नहीं याद रहने वाला। किसी को मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ एक प्रश्न कि क्या पुरुषार्थ करते हो, तो बोलते मुरली सुनते हैं, ये पुरुषार्थ है क्या? एक बार बाबा ने बोला गए मुरली सुने आ गए, ये है पुरानी चाल, साकार मुरली वाक्य, साकार मुरली के पापा का वाक्य है, कुछ नहीं होने वाला। मुरली सुनी गई, मुरली भूल गई, याद रही कहानियाँ। अगर कुछ कहानी होती है ना बीच में तो वो याद रहता है, बस मुरली नहीं याद रहती। 85% माइंड की ऐसी टेंडेंसी है कि उसको रिवाइज नहीं किया गया तो गया, भूल गया। इसके लिए उसको बार 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 रिवाइज करना है। ऐसे सोचो कि कल की जो मुरली है, कल जो मुरली है ना, वो आप सबको दे दी गई अभी, ठीक है। और ऐसा बताया गया कि शाम को वही मुरली पे टेस्ट होने वाला है, और वो जो टेस्ट का रिजल्ट है सब जगह डिस्प्ले होने वाला है, ज्ञान सरो पांडवन पी और उसमें ऐसा डिस्प्ले होगा पास कैंडिडेट फेल कैंडिडेट, पासिंग मार्क है 80%। खाली 100 क्वेश्चन रहेंगे, खाली 20 ही रॉन्ग हो सकते हैं, तो कैसे पढ़ोगे कल की मुरली फिर? कैसे पढ़ोगे बताओ? मुरली आज दे दी सबके हाथ में है, और सबको बोला है कि कल शाम को इस मुरली पे टेस्ट होने वाली है, और टेस्ट का रिजल्ट एक बड़े चार्ट लगेगा, एक हॉस्पिटल लगेगा, एक पीस पार्क लगेगा, एक पांडवन लगेगा, एक मधुबन में लगेगा, और एक शांतिवन में लगेगा, और इंटरनेट से रोजरी में सारे सेंटरों को जाएगा नाम के साथ पास फेल। रात भर पढ़ते रहेंगे, एक भी पॉइंट मिस ना हो, पढ़ेंगे ना। स्टूडेंट की जब एग्जाम होती है, बीए की एग्जाम, ट्वेल्थ की एग्जाम, कैसे पढ़ता है? सब छोड़ देता है, दिन रात पढ़ते हैं लोग, क्योंकि वो टेंशन है ना, टेंशन चाहिए थोड़ा सा पढ़ने के लिए, नहीं तो आए सुना और गया। क्या सुना? बहुत अच्छा था, आज की मुरली बहुत अच्छी थी। क्या थी वो मत पूछो, बस बहन जी ने आज की मुरली बहुत अच्छी सुनाई, क्या थी पर वो नहीं पता। तो ऐसे पढ़ो कि जैसे हमके उसके ऊपर हमको टेस्ट देना है, उसके पॉइंट को हमको अपना बनाना है, उसको पकड़ लेना है, धारण कर लेना है। ये तभी होगा जो थोड़ा सा ऐसा फोर्स चाहिए। इज्जत का सवाल है ना। है कि नहीं? पूरे सेंटरों पे नाम जा रहा है ये भाई फेल। वो जब होता है ना, हम हमारे स्टूडेंट, हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, उनकी हमने टेस्ट ली, पहली बार टेस्ट ली, 8 लोग थे, 5 लोग फेल हो गए। तो फिर मैंने बोला अभी नेक्स्ट टाइम जो होगा ना उसका रिजल्ट लगेगा और डिस्प्ले होगा, सामने का नोटिस बोर्ड है ना हॉस्पिटल का, वो जो बोर्ड है वहाँ डिस्प्ले होगा, वहाँ डिस्प्ले होगा, वहाँ डिस्प्ले, और ये जो नोटिस है, ये जो 5 लोग फेल हो गए ना उनका भी डिस्प्ले किया। वो बिल्कुल आए, सर प्लीज डिस्प्ले मत करो सर, सब लोग पढ़ते हैं सर, ये स्टाफ पढ़ता है, फिर ये नर्सेस पढ़ते हैं, वो सब देखते हैं, अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगाया, सब सर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, ये पास 3 ये फेल। और दूसरी बार जब एग्जाम दिया तो ऐसा पढ़ा सब, सब पास हो गए। ये जब तक ये नहीं होता है ना, इज्जत की बात नहीं आती, तब तक कोई पढ़ता नहीं। ऐसा ऐसा क्या है, ठीक है ऐसी है तुम्हें। एक तो हमारा डॉक्टर जय, वो तो रोना लगा मेरे पास आके, सर प्लीज मत लगाओ, नोटिस पे मत लगाओ बस। पर वो जब तक नहीं करते ना, अंदर से फोर्स यही नहीं होता है कि कुछ करूँ। मुरली का ही मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ये तो मैंने उधर का बताया हॉस्पिटल का, पर मुरली का बता रहा हूँ। पासिंग मार्क 80%, और रोजरी होती है मधुबन रोजरी, जो सारे सेंटरों को मेल जाते हैं उस पर आपका जाएगा नाम सहित फेल। तो ऐसी बात है। फिर आगे की पॉइंट में बाबा ने बोला, किस बारे में बोला? सच्चे दिल आगे है थोड़ा सा उसके पहले। अच्छा चलो, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। सच्चे बाप का सच्चा बच्चा बनकर, सच्चे सत्य भूमि के निवासी बनकर असत्य कर्म किया तो उसका प्रत्यक्ष दंड वंडरफुल रूप में साक्षात्कार यहीं पे होगा, ऐसे कुछ बोला बाबा ने। वंडरफुल रूप में साक्षात्कार यहीं होगा। अगर सच्चे बाप का सच्चा बनकर असत्य कर्म किया तो उसका प्रत्यक्ष दंड यहीं पे होगा, यहीं पे मिलेगा। धर्मराजपुरी में नहीं बोला बाबा ने, धर्मराजपुरी में अलग से साक्षात्कार होगा, पर उसका साक्षात्कार जो हुआ, जो जो भी कर्म किया उसका यहीं होगा साक्षात्कार। और फिर आगे बोला ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के बीच या ब्राह्मणों के स्थान में पैर नहीं ठहर सकोगे, दाग स्पष्ट दिखेगा, छिपा नहीं सकेंगे। आगे का वाक्य, अगर इस सत्य भूमि में रह के असत्य कर्म कोई करता है तो दाग स्पष्ट दिखेगा, छिपा नहीं सकेंगे, मन हिलते रहेगा। बाबा ने बोला आगे, आपे ही आप अपने आप को आपे ही दंड के भागी मत बनाओ, घबराओ नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं। बहुत अच्छा वाक्य है मुरली का, लास्ट जो पैराग्राफ फर्स्ट मुरली का, इतनी सूक्ष्मता है इसमें, कैसे नहीं समझना कि हमने कुछ कर लिया और किसी ने देखा तो नहीं, कमरे में बैठ के कुछ कर रहे हो, देख तो नहीं रहा है कोई। बाबा ने बोला है दाग स्पष्ट दिखेगा, छिपा नहीं सकेंगे, ब्राह्मण या ब्राह्मणों के बीच पैर ठहर नहीं सकेगा। हाँ, कौन छिप जाएगा? हाँ, खुद छिप जाएंगे। तो ये सत्य भूमि है, बच्चे बाप का सच्चा बच्चा बनकर, सत्य भूमि के निवासी बनकर अगर असत्य कर्म किया तो उसका जो प्रत्यक्ष दंड है, नियम क्या है अविनाशी, एक का लाख गुना प्राप्ति, एक का लाख गुना पश्चाताप या भोगना, दोनों चीजें। एक की लाख गुना प्राप्ति है, किसी की सेवा कर दी बहुत मिल गया, निस्वार्थ भाव से सेवा कर दिया हमको मिल गया, पर विकर्म अगर किया। एक मुरली में बाबा ने बोला है बच्चों को 63 जन्म के विकर्म विनाश करने के लिए इतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद के विकर्मों को विनाश करने में लगता है। बचपन से जो पाप किए वो शायद विनाश हो गए, या 63 जन्म जो पाप किए वो विनाश हो गए, पर जब से ब्राह्मण बने उसके बाद जो पाप किए अभी देखो कितनी सूक्ष्म बात है। ब्राह्मण बनने के बाद में पाप, बाबा ने एक मुरली में बोला था किसी को देह देखना पाप है, अभी वहां से चालू है, किसी को आत्मा ना समझ के देह देख लिया वहां पाप है। कितनी हाँ, वो भी लाख हो जाएगा, हर चीज लाख हो जाती है यहाँ पे। किसी की निस्वार्थ भाव से बहुत सच्चे दिल से हमने यज्ञ की सेवा की, यज्ञ की कुछ बचाया, उस दिन बाबा ने एक मुरली में भी बोला यज्ञ का खाते हो तो सेवा करनी पड़ेगी, अभी 3-4 दिन पहले मुरली में था थर्ड पेज, यज्ञ का यहाँ का खाते हो तो ये सेवा भी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये भी बोझ है, हम सब कुछ खा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं और सेवा कुछ नहीं। आज दादी ने बोला 10 घंटा सेवा किसकी है, तो एक ही भाई ने उठाया हाथ। सेवा मनसा वाचा कर्मना तीनों, कल परसों मुरली में, कल की मुरली में था, इसका शौक होना चाहिए मनसा वाचा कर्मना सेवा करने का। अगर स्थूल सेवा कम है, मनसा सेवा योग को बढ़ाना है, जिसके पास टाइम बहुत है ना वो योग को जितना बढ़ाएंगे अपने आप विश्व की सेवा होती रहेगी, क्योंकि वो सेवा आज बाबा को स्थूल सेवाधारियों की इतनी आवश्यकता नहीं है। आज बाबा 100 को बुलाएगा तो 200 लोग आ जाएंगे भाग के, अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई 100 लोग चाहिए, 200 आ जाते। बाबा को स्थूल सेवाधारियों की कम नहीं है, बाबा को सूक्ष्म सेवाधारी चाहिए। सेंटरों पे बहने दिन रात बिजी है सेवा में, योग का बहुत कम है उधर। मीटिंग चालू होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो रात को 10 बजे मीटिंग चालू होती है, चलती है 2 बजे तक 3 बजे तक, कहीं पे भी जाके देख लो सारे सेंटरों का क्या हाल है, बहने बिजी रहती है कुछ ना कुछ करने में सेवा में, उनको बैठ के जैसे मधुकर हम लोग यहाँ करते वैसा कहाँ कर सकते, थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वो सब करना। बॉम्बे में सबसे पहली बार जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके पहले कभी नहीं हुई थी कॉन्फ्रेंस, तो संदेश ही संदेश लेके गई बाबा के पास और संदेश लाई, तो बाबा ने बोला संदेश में कि बच्चों ने बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस की, बच्चे बहुत खुश है, बाबा को भी बहुत खुशी है, ऐसा पूरा संदेश था, और लास्ट में एक वाक्य था पर बाबा को भूले हुए। खत्म कर दिया भाई सब, पूरा संदेश सुनाया बाबा ने, बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की, अच्छी कॉन्फ्रेंस की, कई लोग आए उसमें, और बहुत खुशी में है बच्चे, बच्चों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, बाप भी बहुत खुश है, पर बाप को भूले हुए हैं, फुल स्टॉप, संदेश पूरा। बैठ के या चलते फिरते जो भी जो सकाश वाली जो सेवा है ना, ये बाकी ब्राह्मण नहीं कर पाते, क्योंकि वो सेवाओं में लगे, वो भी जरूरी है, उनका वो पार्ट है, बहनों का वो पार्ट है, पर सेंटरों पे आप जाओ वहाँ पे योग और वो सब कम है। बाबा ने तो वो नहीं दिया, वो तो सेवा भूमि है, ये तपस्या भूमि है, बस हिसाब खत्म। ये तपस्या है, यहाँ तपस्या करना है, वो सेवा है, वहाँ सेवा करना है। तो ये एक चीज बोली बाबा ने। फिर दूसरा आज की मुरली में और कोई पॉइंट है ना? एक तो पैराग्राफ रह गया, अभी दो पैराग्राफ रह गए सेकंड पेज के। हम तो डायरेक्ट इन्होंने बोला इसके लिए वहां पे आ गए थे। हाँ ये है ना, बाप को जिम्मेवार कौन? बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं लेना है, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ये बोलना अर्थात देह अभिमान का इसमें अभाव होना, देह अहंकार इसका अभाव होना चाहिए। बाबा ने बोला अपनी भाषा को बदल दो। बाबा ने वहीं पे बोला है कि सत्य की जो नाव है, शुरुआती वो पैराग्राफ की वहां से की है, सत्य की जो नाव है, सत्य बाप का साथ है, वो हिलेगी डोलेगी पर डूबेगी नहीं। बाप का बनना अर्थात मैंपन को मिटाना अर्थात बाप का बनना, बाप को सौंप कर वापस नहीं लेना है। और एक ही जिम्मेवारी आपकी है, वो कौन सी चिमन भाई? केवल एक ही जिम्मेदारी है आपकी, बाबा ने बोला, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं वो नहीं, बताओ आज का बताओ। बताओ हफ्ते भर का है। एक ही जिम्मेदारी, नहीं वहीं पे है संतोष, बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं लेना है, बाबा ने बोल दिया है। ठीक है, जिम्मेवार कौन बाप? वो दादी के इसमें भी बोला है, जिम्मेवार कौन बाप, बोझ क्यों उठाते, वो दूसरी बात है। एक ही जिम्मेवारी है, जो जैसे वो चलाए वैसे चलेंगे, जो वो वैसे करे वैसे करेंगे, जिस स्थान जिस स्थिति के स्थान पर रखेंगे वैसे वहां बैठेंगे, ये एक ही जिम्मेवारी है तुम्हारी। सूक्ष्म पॉइंट है पर वो वहां बैठी रहती है पॉइंट छुप के, उस वहां से पकड़ के सब बुद्धि में बिठाना है परमानेंट। और क्या था, और भी कुछ था संतोष? फर्स्ट मुरली, हाँ एक चीज थी ना, दूसरों के द्वारा स्वयं को घबराओ नहीं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि हिसाब किताब, अपना हिसाब किताब और स्वभाव संस्कार दूसरों से, उससे घबरा जाते हैं बच्चे। बाबा ने बोला वहां पर मानसिक परीक्षाएं बीमारी के रूप में आती है, मानसिक परीक्षा बीमारी के रूप में आती है, उसमें घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, गहराई में जाओ। ऐसे बोला ना, घबराना नहीं है पर गहराई में जाना है उसके। और फिर धर्मराजपुरी का बताएं, धर्मराजपुरी में साक्षात्कार नहीं है, यही होगा सारा साक्षात्कार। जैसे मैं बताया ना, कल का मुरली का टेस्ट होगा और शाम को रिजल्ट लगेगा, पास फेल, तो नाक कट जाएगी ना हमारी, हमको अगर 80% से नीचे मिले तो लास्ट में भी ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा, सबका लग जाएगा और सबका प्रत्यक्ष हो जाएगा। कोई सोच रहा होगा मैं तो बहुत बड़ा योगी हूँ, वो उसका नाम ही नहीं है उसमें। ऐसे भी होगा, कल की मुरली में था ना, अपने आपको मियू मियू मिया मिट्टू नहीं समझो, कल था ना, कल ही था शायद, किस बारे में था वो? विकर्म विनाश के बारे में था, याद के बारे में, हाँ मियाँ मिट्टू नहीं समझ। हम तो दिन रात याद करते हैं, बाबा कहते हैं सेकंड भी याद नहीं करते। और ये हो गया, हो गया शायद यहीं पे पूरा हो गया, ये था पूरा मुरली। तो बाबा ने विचित्र लीलाएं देखी, अलग अलग बच्चों की लीलाएं देखी, अलग अलग प्रकार के बच्चे देखे, और ये देख के भगवान से क्या होती है, खुशी होती होगी, देख देख देखो क्या क्या कर रहे हैं। हाँ ये अभी ये मुरली राजू रमजबाज, वो तो जादूगर के बारे में मुझे पता नहीं है, राजू रमजबाज कोई जादूगर था? उस दिन कुछ बता रहे थे आप सीमन भाई, वो कुछ कुछ करता है सब छिपा देता है खुद को, वही है ना। बताता नहीं, पर ये राजू रमजबाज नाम का कोई जादूगर होगा वो टाइम पे छोटा मोटा बाबा, तो जो भी मुरली में सुनाते हैं उस समय का जो भी था वो सब मुरली में आ जाता है। सर्वोदया लीडर, सर्वोदया मूवमेंट चालू थी, वो आ गया। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार एक मूवमेंट चालू हुआ 1920 में, वो सेकेंड गांधी जी ने, उसका नाम क्या है, सरदार कुछ तो, उसने चालू किया था वो मूवमेंट खुदाई खिदमतगार। वो उधर 120 में चालू हुआ, 1920 में बाबा की मुरली में तुम हो को भाई खुदाई खिदमतगार आ गया। जो उधर करते वो है सर्वोदया लीडर चालू है, तो बाप है सर्वोदया लीडर। जो दुनिया में मतलब मुरली जैसे दादी जानकी का क्लास होता है ना, दादी जानकी के क्लास को वही आत्मा ज़्यादा समझ सकती है जो उनके आसपास है, क्योंकि जो क्लास में होता है बोलते हैं ना, वो दो तीन दिन में आसपास जो कुछ हुआ उनके आजू बाजू में वो बहुत सारी बातें रहती है, वो ज़्यादा समझ सकते कि जो उनके आसपास है। हाँ, तो वो टाइम पे गांधी जी था, तो गांधी जी का आ गया बाबा, उनको याद करता है जो आसपास वाले हैं वही एरिया से। परमानेंट मेमोरी में चली गई है ना, बुद्धि स्वच्छ है सब। ये कल परसों की मुरली में और एक अच्छी पॉइंट थी, ज्ञान कैसा है, ये विचित्र, रमणीक और सिंपल। ये ज्ञान है विचित्र, ये ज्ञान है रमणीक, और ये ज्ञान है सिंपल। बाप को याद करो, आत्मा आत्मा समझो, बाप को याद करो, और अपने बाप को याद करोगे तो शांति का, हाँ उससे जीवन मुक्ति का बल मिलेगा। चलो अभी ये हुई फर्स्ट मुरली, सेकंड मुरली दादी जी से मुलाकात, दीदी से मुलाकात, सॉरी क्या बोला वहाँ पर, साक्षी दिशा स्थिति, घबराना नहीं है, बार बार किया सामने आ रहा है, साक्षी दृष्टा होकर रहो तो क्या हो जाएगा, योग युक्त, योग युक्त तो बनेंगे, राज युक्त तो रहेंगे, और फिर लाइट हाउस खुद बन के हर परिस वायुमंडल को डबल लाइट बना देंगे। घबराना नहीं कोई भी परिस्थिति, जैसे वो ये बता रहे थे शरेंद्र भाई, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या करते हैं, उनके सामने पहाड़ भी राई बन जाता है और कमजोर के सामने राई भी पहाड़ बन जाता है। दादी ने भी बोला बड़ी बात, बाप और बात, बात है तो बाप नहीं है, बाप है तो बात नहीं, और योगी अर्थात जो बड़ी बात को छोटा कर दे, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात बड़ी बात को छोटा कर दे, छोटी बात को समाप्त और जो कमजोर है वो जो बात है ही नहीं उसको बात बनाएगा, पहले जो है ही नहीं कुछ उसको बात, और जो छोटा है उसको बड़ा बना के सब जगह फैलाएगा, किया या ऐसा किया, इसने इसने ऐसा किया, ये ऐसा किया। पर जो असत्य वाली बात रहती है ना, जैसे हमारे बारे में कोई बहुत फैला रहा है सब जगह, ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक सिचुएशन है, एक आत्मा है उसके बारे में एक दूसरी आत्मा सब जगह कुछ ना कुछ फैला रही है, तो उस आत्मा ने डिस्टर्ब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, होना तो नहीं चाहिए पर होता तो है, होता तो डिस्टर्ब, लहर फैला रहा है पूरा इधर। पर इसके एक उदाहरण है रामायण में, रावण पूरे आकाश में बाण फैला देते हैं अपने माया और माया से, पूरे आकाश में बाण और उसके ऊपर मतलब कुछ तो करता है ऐसा, राम एक बाण मारता है और वो सारे खत्म हो जाते हैं, वो सारा होता है असत्य। असत्य का चाहे कितना भी बड़ा वायुमंडल हो, सत्य का एक बाण ही उसको खत्म कर देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारी कोई निंदा, ग्लानी, अपमान हमारे सामने बहुत अच्छा बोलते हैं पर हमारे पीछे जाके हमारी ग्लानी करते, उसको क्या करेंगे ऐसी सब आत्माएं यहाँ मिलेंगी कि जो हम हमारे सामने बहुत अच्छा से बोलते हैं पर हमारे पीछे जाके ग्लानी करेंगे। उससे भी ऊपर और एक चीज़ है, कमेंट्स, ब्राह्मण जीवन में कमेंट्स, अपवित्रता, कमेंट्स, कमेंट्स, टॉन्ट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बाकी सब तो बहुत मजबूत रहती है आत्मा, पर ये सारी सब चीज़ें होती हैं तो एकदम से हिल जाती है। हाँ, दुख देने का ये जो संस्कार है ना, तंग करना किसी को दुख देना, ये ऐसा संस्कार है कि जो आत्मा करती है उसको भी समझ में नहीं आता है वो कर रही है करती है, पर उसके द्वारा हो रहा है वो, तो इसको पकड़ पाना ही बहुत मुश्किल बात है। जैसे हम अपने अहंकार को पकड़ नहीं पाते, जैसे मेरा, मैं बहुत बार देखता हूँ कि मुझ में तो बहुत अभिमान है बुद्धि का, तो पर ये मुझे पता है कि है, ये रियलाइजेशन है, तो एक दिन वो चला जाएगा, पर जिसको रियलाइजेशन ही नहीं है उसका तो कभी जाएगा ही नहीं। ये रियलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि इसको छोड़ पाना सबसे मुश्किल बात है दुनिया में, बुद्धि का अभिमान, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है, चाहे वो ये ज्ञान है या मेडिकल ज्ञान है, तो उसका अभिमान तो रहेगा ही। अभी कोई इंजीनियर है तो उसको तो ये तो रहेगा कि मैं इंजीनियर हूँ, बुद्धि में तो उसका अपना अभिमान है ही ना, उसको छोड़ना वो छूटेगा। मैंने ये दो तीन लोगों से प्रश्न पूछा कि कैसे छूटेगा, बोले इसका रियलाइजेशन हो तो अपने आप एक दिन छूट जाए, अभी नहीं छूटा है पर छूट जाएगा। पर हमको अपना रियलाइजेशन हो कि मेरे अंदर ये कमी है, अभिमान तो नहीं है पर वो है अंदर ही अंदर है, मतलब क्योंकि ज्ञान है ना, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं उसको निकालने का, पर वो जाएगा कब जाएगा पता नहीं, पुरुषार्थ तो है पर पुरुषार्थ बहुत सूक्ष्म चाहिए। हाँ, बुद्धि का अभिमान और काम, ये ऐसे दो चीजें हैं। बुद्धि के अभिमान को, वो नशा तो कई लोगों को रहता है, मैंने तो मतलब अज्ञानियों को तो कितना नशा है बाहर, बहुत ज्यादा। अरे बाबा तुम इतना नशा रहता है, कोई ऑफिसर आईएएस ऑफिसर या ऐसे खतरनाक नशा। मैंने जब मैं मतलब एमबीबीएस में था तो हमारे जो कंसल्टेंट थे ना, इतना अहंकारी थे वो, बाप रे, पेशेंट के बेड पर ऐसा पैर रखता था एक तो, हाँ बोल क्या तकलीफ है, ऐसे मतलब इतना देख के ऐसे लगता था वो मतलब। और हर पेशेंट को एक बात बताते थे, तुमको पता है ना मेरा क्या है, मैं एमडी डॉक्टर हूँ, पता है क्या तुमको, हर को हर एक को सुना देते मैं क्या हूँ। मतलब इतना अहंकार कि उसको अगर टच करो तो बस कोई टच नहीं कर सकता। हर एक दुनिया में जितने डॉक्टर्स देखो आप, थोड़ा सा उनको कुछ कर दो, टच कर दो उसको कि आपने ये गलत लिखा है, ऐसे भड़क जाएंगे कि बस जबरदस्त अहंकार। और ये इधर ही नहीं, हर फील्ड में नेताओं को कितना अभिमान रहता है अपना, हाँ हर एक को अपना नशा कितना रहता है। अभी ये पर ये पता रहना कि ये है एक चीज और मुझे इससे मुक्त होना है, ये रियलाइजेशन तो ऑटोमेटिक आत्मा एक दिन मुक्त हो जाए। साहूकार लोग जो भी है सबको नशा रहता है, किसको नशा नहीं है, हर एक से धन का तो नशा रहता ही है, रहता है। जिसके पास बहुत धन है नशा नहीं रहेगा ना धन का, हाँ वो इसके लिए बोल रहा हूँ ना, दोनों का जो बैलेंस है ये इतना सूक्ष्म चीज है, वो सामान भी है, उसके साथ मुझे और एक चीज जोड़नी पड़ेगी कि मुझे सब आत्माओं को ठीक करना है, सबका कल्याण करना है, ये सेवा भाव आ गया वहाँ, सेवा भाव के साथ उसको जोड़ दिया तो ठीक है। पर 24 घंटे वो जुड़ा रहे, वो बीच बीच में ये भी अपना ऊपर उठाता ना कि मैं हूँ, निरंतर नहीं होता है ना वो, बीच में निकलता है बाहर, उसको छेड़ दो अहंकार को तो बाहर निकलता है वो पूरा नागिन जैसा, और वो कौन है छेड़ने वाला, उसको काटने के लिए रेडी रहता, ऐसे कैसे बोला मुझे। हर एक है अभिमान तो ऐसी चीज है कि अभिमान तो रावण का स्वरूप बोला है ना रामायण में, रावण के जो छोटे बच्चे रहते हैं वो कुछ ना कुछ विकार है, उसका जो बेटा इंद्रजीत वो काम का प्रतीक है, हर एक का प्रतीक दिखाया है, वो इंद्रजीत काम का प्रतीक, वो उसका प्रतीक, वो उसका प्रतीक, और रावण स्वयं अहंकार है। तो बाकी सब मर गए, हनुमान ने किसको मार दिया, किसने लक्ष्मण ने किसको मार दिया, पर राम को, रावण को मारने के लिए स्वयं राम को आना पड़ता है, स्वयं भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी वो अहंकार नहीं जाता है, बाकी सब मर गए विकार, पर अहंकार एक ऐसी चीज है कि परमात्मा कृपा ही चाहिए वहां पर। दादी ने बोला ना परमात्मा बाप कृपा करते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख बना रहे, तो परमात्मा कृपा जब होगी ना तो ये अहंकार जाएगा, बाकी विकार हम अपने पुरुषार्थ से खत्म कर सकते हैं, पर अहंकार वो जाने के लिए वो तो रहता ही है ना। मैं वो तो बड़ी दादी की जो स्टेज थी उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि मैं ये चाहती हूँ, दादी चाहती है, दादी कहती है, उसने वो मैं निकाल ही दिया पहले से ही, क्या ला दिया, दादी कहती है, थर्ड पर्सन में बात कर रही है, बात जो चल रही है वो दृष्टा होके बात चल रही है, वो साक्षी है और वो चाहती है। ये जो स्टेज है ये अध्यात्म की सबसे ऊंची स्टेज है, साक्षी दृष्टा, मोस्ट हाईएस्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज डिटैच्ड ऑब्जर्वर। उसमें ये है नहीं कि दादी का आज संकल्प है, ऐसे ही था ना, दादी चाहती है ये हो, ये इसमें मैं कहा है, वही खत्म हो गया, नयापन खत्म, मतलब बाप का बनना आज की मुरली में, नयापन मिटाना होता है बाप का बनना, कितनी ऊंची स्टेज है ये। तो वो जो मैं है ना उसमें भी, जैसे काम, पहले लक्ष्मण की लड़ाई हुई काम इंद्रजीत के साथ, तो इंद्रजीत ने उसको साप केस में बांध दिया, फिर लक्ष्मण वापस जिंदा हुआ और फिर इंद्रजीत को मारा। इसका अर्थ ऐसा है कि पहले काम से हर व्यक्ति की हार होती है, एक बार वो काम का प्रतीक, काम से हार हुई, वापस उठा, फिर काम को मारा उसने। पर वो रावण को नहीं मार सकता, हनुमान रावण को नहीं मार सकता, उसके लिए स्वयं भगवान ही कोई आना है जो अहंकार को खत्म करे। तो वो बात थी। फिर और क्या था वो मुरली में, बोझ के बारे में था ना, बोझ क्यों उठाते हो, किसने बोला उठाने को, बाप को दे दो, पुराने संस्कार क्यों बोलते हो, मेरे संस्कार क्यों, नया जन्म नया जीवन, कुल ही बदल गया तुम्हारा। जैसे वो उदाहरण दिया, शादी हो जाती है किसी कुमारी की, एक कुल से दूसरे कुल में जाती है, तो जो नए कुल की जो मर्यादा है वो धारण कर लेती है, पुराना सरद छूट जाता है, तो तुम आ गए ब्राह्मण कुल में, फिर भी बोलते हो मेरा संस्कार है, मेरी आदत ही ऐसी है, क्या करूँ, जोर से बोलना, किसी को डांटना मेरी आदत ही है, क्या करूँ, मेरे से सहन ही नहीं होता है कोई गलत करता है तो, मैं देख ही नहीं सकता है कोई झूठ बोल रहा है तो। ये ब्राह्मणों के प्रश्न है, सब अच्छा है, पर कोई अगर झूठ बोलता है तो वो नहीं सहन कर सकते, कितना प्रैक्टिकल प्रश्न है। कोई हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमको गुस्सा आता है, उसने झूठ बोला तुमने गुस्सा किया,
बराबर
है दोनों के हिसाब से, उसने वो किया तुमने ये किया, खत्म, दोनों में सेम। हाँ वही ना, पर आ तो रहा है ना, दोनों गुनेगार तो दोनों कैटेगरी का, उससे ज्यादा वो तो खाली झूठ है, ये तो क्रोध है, क्रोध तो आ गए, उससे भी बड़ा है। तो इसमें एक ही है कि सूक्ष्म आज की मुरली बहुत बहुत हुई है, उसमें जो जो स्टेजेस जो बताई है ना, कभी कभी खुश कभी उदास, ये कर्मक बहुत बहुत हुई है गति हर चीज की। अपने आप को देख पाना कि मेरे अंदर ये कमी है, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को ही नहीं देख सकते, बाकी सबको दिखता है, जिसने ये किया, इसने ये किया, ये सो रहा है योग में, ये कर रहा है योग में, वो ऐसा कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं वो ही नहीं दिखता है, बाकी सब दिखता है ना। तो ये और क्या था सेकंड मुरली में, याद है, मर्जीवा, मर्जीवा जन्म है, ये नया जन्म है, नया संस्कार है, नया कुल है, नई मर्यादा है यहाँ पर, बाप के बने नहीं है, तुम बोलते हो पिछले संस्कार। एक दो तीन दिन पहले मुरली में ब्रह्मचर्य की बात आई थी, बहुत अच्छी बात थी, कौन सी, हाँ अगर ब्रह्मचर्य धारणा हो नहीं सकती बिना, अगर ब्रह्मचर्य टूटा धारणा हो नहीं सकती, ये कल का था, कल की मुरली में ये अपवित्र स्वप्न, जब स्वप्न हमारे पवित्र होना चालू हो जाए ना तो समझ लो ना हमारी अभी प्योरिटी मजबूत है, पर अगर हमारे स्वप्न में अपवित्रता है तो अभी तक प्योरिटी में पुरुषार्थ चालू रखना। हाँ वो भी बोला, वो साकार मुरली पहले साकार मुरली में बाबा बोलते थे हाथ से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, अगर संकल्प में भी आए तो कर्म में नहीं आना चाहिए, ये साकार मुरली, पर अव्यक्त वाणी ऐसी नहीं है, अव्यक्त वाणिया बोलती है संकल्प में भी नहीं संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। लास्ट सीजन की अक्टूबर की मुरली, हाँ स्वप्न का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा दिनचर्या ठीक रखो वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हाँ वो क्योंकि पास्ट को डिलीट करना है ना, आत्मा में सब भरा है, पास्ट भरा है इतना सारा, उसको डिलीट कैसे होगा, दो आश्चर्य भी बनो डिलीट। ओम शांति हो गया ना, कितना टाइम होगा, 10 मिनट है, 10 मिनट है ना, अभी संजय भाई बताएंगे कुछ, हमारी तो बोली खत्म हो गई। Thank you.
कि बाप बच्चों की जो है वो लोग क्या देखते हैं, बाप की महिमा अपार अपार है,
वैसे बच्चों की भी महिमा अपार अपार।
तो जैसे हमें प्राप्ति भी एक का प्रभु मिला है तो पश्चाताप नहीं है, एक का प्रभु इसलिए बाबा के हम बच्चे बने हर कर्म
ये पॉइंट हमारा रह गया श्रीमद में मन मत मिक्स नहीं करना। एक सेकंड, मन मत मिक्स नहीं करना, मन मत अगर मिक्स करते हैं तो प्राप्तियां नहीं होगी, जो प्राप्ति स्वरूप नहीं बन पाएंगे, बाबा ने बोला है। और श्रीमद को समझना, क्या श्रीमद है, जैसे एक श्रीमद है ठीक है, उसको 100 लोगों ने पढ़ा और 100 लोगों ने धारण किया और 100 लोगों ने अलग अलग रीति से धारण किया और हर ये सोचता है कि मैंने जो धारण किया वो ही राइट है। कितनी घुसी बातें हैं, एक ही श्रीमद एक ही सुनी भी सबने, धारण भी सबने की, पर हर एक ये सोचता है कि मैंने जिस रीति से धारण की वो राइट है और इसने जिस रीति से उसको धारण किया वो रॉन्ग है। बोलने वाला किस क्या रीति से बोल रहा है उसको समझने के लिए हमारी स्थिति भी उतनी ही चाहिए। जैसे वो वेदों शास्त्रों के बारे में बोलते हैं ना, ऋषियों ने तो वेद लिख दिए, अभी जो लोग उसको समझ रहे हैं कहाँ उसको समझ पा रहे हैं वेदों को, क्योंकि उन्होंने जो स्थिति में वेद लिखे वही स्थिति में चाहिए। बाप जिस स्थिति में बोल रहा है वो अशरीरी संपूर्ण अशरीरी अवस्था में बैठ के बोल रहा है वो चीज़ें उसके लेवल पे, हम अपने देहभान की लेवल पे उसको समझने की बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जैसे वो टेररिस्ट है ना, वो भी गीता का उदाहरण देता है कि देखा गीता में कृष्णा ने किया ना युद्ध, वो सब खराब थे उनको मारने के लिए, तो मैं भी ये जो भारतवासी सारे हैं इनको खत्म कर दूंगा। मतलब वो भी गीता का उदाहरण देके अपने आप को जस्टिफाई करता है कि मैं राइट हूँ, मैं गीता को ही फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। वो कोई आतंकवादी जो लोग हैं वो क्या है, वो बोलते हैं हम तो सही कर रहे हैं, उनको ऐसा थोड़ी ना है कि वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उनको, उनका तो धर्म है वो, उसके लिए वो जान दे सकते हैं अपनी, तो वो गलत तो हो ही नहीं सकता, उनके लिए वो राइट है। तो हमारा वो जिसने गांधी जी को मारा नथुराम गोडसे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसने विवेकानंद का कंप्लीट लिटरेचर स्टडी किया था, उसने महात्मा गांधी का पूरा लिटरेचर स्टडी था, वो इतना एजुकेटेड था और उसने वो 60 पेजेस का रीजन दिया कि मैंने क्यों मारा, ऐसे ही नहीं मार दिया उसने, वो बोलता है उसने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया, उसके ऊपर मूवी भी बनी है, ऐसे बहुत सारा है। मतलब वो अपने तरफ से जस्टिफाई करता है, अगर आप वो उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा किया मारा, मारना ही चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है उसमें कि वो पढ़ के लगता है अरे ये तो बराबर है, ये सबके लिए यही जिम्मेवार है। महात्मा गांधी की वजह से अगर नहीं होते तो ये सब नहीं होता, उनको मारना जरूरी था। मतलब उसने इस तरह से अपने आप को जस्टिफाई किया, मतलब उसमें हम कन्फ्यूजन में आ जाते, फिर समझ में नहीं आता क्या है ये सब, छोड़ो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। वही वो उनका भक्त था, उनको फॉलोअर था पहले, वो कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना था भाई, वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो कोई ऐसे वो उसने तारों का उदाहरण दिया, उसमें महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया है, महाराणा प्रताप ने कैसे अकबर से लड़ाई की, शिवाजी ने कैसे मुगलों के साथ लड़ाई की, तो हमको भी लड़ाई का मार्ग अपनाना चाहिए था इनके साथ, ब्रिटिश के साथ, ये कौन सा नॉन वायलेंस लेके आ गए अहिंसा जिसमें हम इधर ये हो रहे, ये सब चीज़ें उसने बोली है उसमें, और वो पढ़ के ऐसा लगता है ये तो राइट है, ऐसा ही लगता है। तो कहने का भाव ये है कि हर व्यक्ति एक ही चीज़ को अपने अपने विषय से समझने की कोशिश करता है, श्रीमत एक ही है, हम सब ने एक ही चीज़ पढ़ी, पर मैंने अलग रीति से धारण करूँगा, आप अलग रीति से उसको धारण करेंगे, आपका जो बैकग्राउंड है, आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, अब तक जितनी बुद्धि है, जितना समझ पाए हैं बाबा को, जितना प्यार है, जितना वैराग्य है, जितना त्याग है, उस रीति से आपने धारण किया। जो सेवाधारी माता है वो अलग रीति से मुरली धारण करती है, जो यहाँ समर्पित है वो अलग रीति से धारण करता है, जो संसार में कुमार है वो अलग रीति से धारण करता है, कोई गृहस्थी है वो अलग रीति से धारण करता है। एक ही चीज़ को समझना और धारण करना अपना अपना अलग अलग, नंबर वार बाबा तो बोल देते हैं ना, ये नंबर वार चीज़ है, तो ये जो सब है इसको पूरा जैसा है, बाबा बोलते हैं ना जब तुम मुझे संपूर्ण रीति से जान जाओगे तब संपूर्ण, बाबा ने एक मुरली बोला है, जब तुम मुझे स्वयं भगवान को जैसे मैं हूँ वैसे तुम जान जाओगे मुझे, उसी समय तत्काल तुम संपूर्ण बन जाओगे। मतलब हमने बाप को जाना नहीं है, कल की मुरली में था केवल तुमने ही आत्मा और परमात्मा को यथार्थ से जाना है पर हर चीज में नंबर वन यथार्थ यथार्थ जानना, हम ललकार करो और वो जानकर भी भूल जाते हैं ना, बार बार याद कहाँ रहता है। रोज मुरली समय कितने हमको याद रहता है कि ये कौन सुना रहा है। एक दिन ठीक है भगवान मिला, ये जो नशा है कितना साल चलेगा, एक साल दो साल दस साल तो चल नहीं सकता कि भगवान मिल गया कुछ और करना पड़ेगा, एक ही नशा दस साल पंद्रह साल थोड़ी चलेगा। एक साल ठीक है भाई भगवान मिला, बोले मैं भगवान की मुरली सुनने जा रहा हूँ, दूसरे दिन भगवान मिला भगवान पढ़ा रहा है, तीसरे दिन भगवान पढ़ा रहा है, चौथे दिन पांचवें दिन ठीक है भगवान तो रोज ही पढ़ाता है जैसे मैंने एक बार क्लास में प्रश्न पूछा था कि अमृत वेले की बात चल रही थी, मैंने बोला अगर एक दिन सुबह आबू रोड में 3:30 बजे आपका भाई आ रहा है और उसको आपको रिसीव करने जाना है तो आप उठेंगे नहीं। एक बहन थी जो कभी अमृत वेला नहीं करती थी, तो बोले हाँ जाऊंगी पर अगर भाई रोज आना चालू कर दे तो मैं थोड़ी जाऊंगी एक दिन ठीक है ये तो ऐसा ही है ये तो रोज ही है अरे भगवान स्वयं पढ़ाता है सुबह सुबह प्रकाश देता है। तो कहने का यही है कि ये जो है ना एक ही चीज बार बार नहीं चलती है। हाँ नहीं नहीं वो तो आप कर रहे हैं पर बाकी एक ही चीज का नशा लंबा समय नहीं चलता है। इसके लिए हमको ये जो नशा है भगवान मिला इसको समान में परिवर्तन करना है। किसको मिला, कौन मिला, कैसे मिला, वो कौन है, मैं कौन हूँ, मतलब समान नशे का सूक्ष्म रूप ही समान कहलाता है। समान चलेगा लंबा समय पर ये नशा नहीं चल सकता कि भगवान मिल गया, मुझे भगवान मिला है, कितना दिन मिला, आज मिला, दो मिला, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 10 साल, 10 साल के बाद फ्लैट सबको ही मिला है इधर, उसका कुछ वैल्यू कम हो जाती है। मधुबन निवासी है, मधुबन निवासी है, मधुबन की महिमा सुन रहे रोज, जब वहीं रहते हैं गंगा स्थान गंगा, इसके लिए वो जो नशा है ना उसको कम नहीं होने देना है, उसको समान में परिवर्तन कर देना वो नशे को। सोमान सूक्ष्म रूप है नशे का और वो नशा हमारे अंदर रहता है सोमान। जैसे उठते ही ये जो संकल्प है कि मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा हूँ, ये नशा है, ये किसी को बताने वाली चीज़ नहीं है, खुद के लिए है ये। इस संसार में सबसे धनवान मैं हूँ, ये दूसरों को बताने वाली चीज़ नहीं, बताएंगे तो वो लूट लेंगे, चोर सुन लेंगे। सूरज भाई बोलते हैं ना कि दूसरों को सुनाओ मत मैं धनवान हूँ, चोर लूट सुन लेंगे तुम्हारी बातें। ये तो नशा है ना, हमारा अपना नशा है इंडिविजुअल पर्सनल, जो हमको किसी को बताना नहीं है। सबसे भाग्यशाली तो अगर संसार में अगर ये पूछा जाए कि जो सबसे भाग्यशाली है हाथ उठाओ तो सबसे ऊंचा हाथ हमारा ही उठेगा। हमारा नशा ऐसा होना चाहिए कि सबसे भाग्यशाली मैं ही हूँ, कोई नहीं है, कोई नहीं मैं ही हूँ। नशा तब रहेगा हमको हमारे भाग्य का जब हम एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहे होंगे। अगर हमसे बार बार गलतियाँ हो रही है, कभी खुशी कभी गम नीरस स्थिति, आज बाबा ने बोला ना ऐसी अगर अवस्था है तो रुक जाएंगे बीच में, थक कर रुक जाएंगे, फिर व्यक्तियों को आधार बना लेंगे, सहारा बना लेंगे, तिनके का सहारा ले लेंगे, गिरते रहेंगे डूबते रहेंगे उसमें, ये सब बोला है। तो हम एक्यूरेट श्रीमत पर है और हमको एक खुशी रहनी चाहिए अंदर कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो एक्यूरेट कर रहा हूँ, श्रीमत पर चल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो पर हमारे रीति से हम श्रीमत पर हैं। पर हमसे अगर हमको जो पता है ये मर्यादा नहीं है पर वो फिर भी हमने की थी और वापस आ गए, पर की तो हो गया ना। एक वो मैं किताब पढ़ रहा हूँ स्वामी रामा की, अच्छी किताब है। वो सीखता है अपने गुरु के पास, गुरु उसको एक साधु के पास भेजता है और वो गुरु उसको बोलता है तुमको क्रोध बहुत आता है, तुम्हारे अंदर लोभ वृत्ति बहुत है, तुम जाओ उसके पास। तो वो जाता है उसके पास, वो बोलता है मेरे नज़र लोग बिल्कुल नहीं है, उनको बोलता है, बोलते फिर भी जाओ। एक दूसरे साधु के पास भेजता है वो स्वामी रामा को, वो दूसरे साधु के पास जाता है, साधु उसको घर पे रखता है, सब कुछ देता है, बोलते थोड़ा नहा के आओ। नहाने जाता है, नहाते समय वहाँ पे थोड़े सिक्के पड़े रहते सोने के नदी के पास, वो देखता है, जवान रहता है 20 साल का, उसको लगता है ले लूँ, वो लेता है, और लेने के बाद वो अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, वापस रख देता है, आता है वापस। तो उसके गुरु बोलते हैं क्या तुम्हें अभी भी लोभ है, लोभ कहाँ से लोभ, वो बोलते मुझे तो नहीं है, तो फिर तुमने सिक्के लिए क्यों, बोलते मैंने रख तो दिए पर लिए तो ये संकल्प तो आया ना तुमको लेने का अभी भी, मतलब अभी भी लोभ गया नहीं, अभी भी इच्छा है, बाद में वो अलग बात है कि फिर याद आया सारा ज्ञान कि ये क्या करता
है,
करने के बाद वही तो बाबा बोलते हैं ना, करने के बाद महसूस होता है कि मेरे से गलती हो गई, ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है कि जिसमें कोई गलती नहीं है, हम एक्यूरेट श्रीमत पर है, सेकंड स्टेज है उसके नीचे, गलती हो गई और तुरंत रियलाइज हुई कि गलती हुई, उसके बाद की स्टेज है गलती हुई रियलाइज ही नहीं हुआ है कि गलती हुई, और उसके नीचे वाली स्टेज है कि गलती हुई, 10 लोग बता रहे कि गलती हुई फिर भी बोलते नहीं हुई आई एम राइट, माया के दो रूप, मैं राइट हूँ और व्यर्थ संकल्प, 2010 अक्टूबर की मुरली फर्स्ट विदेशियों की, बाबा ने बोला था माया के दो रूप है, एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरा है मैं राइट हूँ, अभिमान है यहाँ। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली, ठीक है, 2 मिनट लोक करते फिर चलते।